लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। एक सुसंगठित नगर के रूप में जेरूसलम का निर्माण हुआ है। यहाँ इसराइल के वंश प्रभु के वंश आते हैं, जैसा कि इसराइल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन, दाऊद के वंश के आसन संस्थापित हैं। जेरूसलम के लिए शांति का यह वरदान मांगो। जो तुझको प्यार करते हैं वे सुखी हों। तेरी चार दीवारी में शांति बनी रहे, तेरे भवनों में सुरक्षा हो। मेरे भाई और मित्र यहां रहते हैं, इसलिए कहता हूं तुझमें शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहां निवास करता है, इसलिए मैं तेरे कल्याण की मांग करता हूं। श्रोताओ, ये था स्तोत्र ग्रंथ का 122वां भजन। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम में हमने इसी भजन की व्याख्या की थी। इस बात का हम सिंहावलोकन कर चुके हैं कि तीर्थ यात्रियों का लक्ष्य प्रभु का पर्वत और प्रभु का पवित्र शहर जेरूसलम था, और जेरूसलम शब्द का अर्थ ही शांति है। जेरू यानी जगह तथा शालोम यानी शांति। 122वें भजन में हमारी मुलाकात उन तीर्थयात्रियों से होती है जो जेरूसलम यानी कि शांति की जगह पर पहुंच चुके थे। भजनकार संपूर्ण तीर्थयात्री समुदाय की ओर से बोलता हुआ बताता है कि उन्होंने जेरूसलम के फाटकों में प्रवेश कर लिया था। उनके हृदय प्रसन्न चित्त थे और उनका रोम रोम प्रभु ईश्वर का स्तुतिगान कर रहा था। जेरूसलम ही वह स्थल था जहां भजनकार के अनुसार इसराइल के वंश प्रभु के वंश आते हैं, जैसा कि इसराइल को आदेश मिला है। यहां न्याय के आसन, दाऊद के वंश के आसन संस्थापित हैं। श्रोताओ, वस्तुतः स्तोत्र ग्रंथ का 122वां भजन हमें इस तथ्य पर चिंतन के लिए आमंत्रित करता है कि विश्वास की अभिव्यक्ति केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं अपितु बाह्य चिन्हों से भी होती है। तीर्थयात्री गाते बजाते और ईश्वर की स्तुति करते तीर्थ स्थल तक पहुंचते हैं। मनुष्य को आध्यात्मिक विश्वास के अतिरिक्त बाह्य चिन्हों की भी जरूरत होती है, इसीलिए हम संस्कारों को ग्रहण करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थनाओं के साथ धूप, लोबान और फूल चढ़ाते हैं। प्राचीन व्यवस्थान के युग में पशुओं की बलि अर्पित की जाती थी, किंतु प्रभु येसु ख्रीस्त ने अपने क्रूस बलिदान द्वारा सभी बलियों की निरर्थकता को दूर कर दिया तथा मानव जाति के लिए एक ही बलिदान स्थापित किया है, जिसकी स्मृति ख्रिस्तीय याजक मिस्सा बलिदान में दिन प्रतिदिन किया करते हैं और जिसमें भागी बनने के लिए सभी ख्रिस्तीय आमंत्रित हैं। इसलिए कि मिस्सा बलिदान ही आपसी प्रेम, सहभागिता और एकता तथा शांति का स्रोत है। और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 123वें भजन पर दृष्टिपात करें। इस भजन में तीर्थयात्री प्रभु की दया की प्रतीक्षा करता है। भजन इस प्रकार है, मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। हम तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए हैं। हमारी आत्मा धनियों के उपहास और घमंडियों के तिरस्कार से तंग आ गई है। श्रोताओं, 123वां भजन वस्तुतः आरोहण का भजन है। तीर्थयात्री जेरूसलम के फाटक से होते हुए मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। सीढ़ियां चढ़ता हुआ वह अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाता है और कहता है कि उसने अपनी आंखें उस प्रभु की ओर उठाई हैं जो स्वर्ग में विराजमान है। विश्वास भरी आंखों से वह ऊपर की ओर बादलों में प्रभु ईश्वर की कल्पना करता है। इस प्रकार वह वही अनुभव प्राप्त करता है जो नबी ईसाया ने किया था। ईसाया के ग्रंथ के 6वें अध्याय के प्रथम 2 पदों में हम पढ़ते हैं, मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे देखा, उसके ऊपर सेराफिम विराजमान थे, उनके 6-6 पंख थे और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, पवित्र 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 है विश्व मंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त विश्व में व्याप्त है। श्रोताओं, बाइबल धर्म ग्रंथ का प्राचीन व्यवस्थान कोई गुप्त दस्तावेज नहीं है और न ही यह कोई ऐसा ग्रंथ है जो केवल महान पंडितों के पढ़ने तक ही सीमित हो, अपितु यह मानव जीवन की साधारण घटनाओं द्वारा वास्तविकता की प्रकाशना करता है। भजनकार उन सेवकों की बात करता है जिनकी आंखें सदैव अपने मालिक के हाथ पर टिकी रहती हैं। मालिक के हाथ के इशारे पर वे अपना काम करते हैं, वे अपने मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं। इसी प्रकार मंदिर में की जाने वाली पूजा भी है। भक्त प्रभु सेवक है जो अपने मालिक यानी कि ईश्वर के आदर में आराधना अर्चना करता है और प्रभु की करुणा और उनकी अनुकंपा की याचना करता है। वह तब तक अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाए हुए रहता है जब तक प्रभु की दया और अनुकंपा उस पर न बरसे। श्रोताओ, तीर्थ यात्री प्रभु से दया की याचना कर कहता है, हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। हम तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए हैं। हमारी आत्मा धनियों के उपहास और घमंडियों के तिरस्कार से तंग आ गई है। जेरूसलम के मंदिर में तीर्थयात्री अपनी सब व्यथाओं को, अपने हृदय में समाई सारी कड़वाहट को प्रभु के समक्ष रख देता है। वह बाबुल में अपने निष्कासन के समय बिताए गए कष्टकर क्षणों की याद करता है। प्रभु के मंदिर में उसे सुकून मिलता है। प्रभु के समक्ष अपनी व्यथाओं को रख उसका बोझिल दिल हल्का हो जाता है। वह मन की शांति चाहता है। उस शांति के लिए वह तरसता है जिससे आशा का संचार होता है, उस शांति के लिए जिसका स्रोत ही जेरूसलम के स्वामी अर्थात प्रभु ईश्वर हैं।
शांति का तुम घर हो,
बीच हमारे बाट लो, शांति का तुम घर हो।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन स्थित प्रेरितिक आवास संत मार्था के प्रार्थनालय में 14 मई को ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने विश्व प्रार्थना दिवस की याद की तथा स्मरण दिलाया कि हम सभी भाई बहन हैं। प्रवचन में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के अलावा और भी महामारियां हैं। बृहस्पतिवार को ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए संत पापा ने प्रार्थना, उपवास और भलाई के कार्य करने का प्रोत्साहन देते हुए कहा, मानव बंधुत्व के लिए उच्च समिति ने आज प्रार्थना और उपवास दिवस घोषित किया है कि हम महामारी के संकटपूर्ण समय में प्रभु से दया एवं करुणा की याचना करें। हम सभी भाई बहन हैं। संत फ्रांसिस असीसी कहा करते थे, सभी भाई बहने हैं और इसलिए सभी धर्मों के पुरुष और स्त्री आज प्रार्थना एवं प्रायश्चित में एक साथ आएं तथा इस महामारी से चंगाई की कृपा के लिए याचना करें। अपने उपदेश में संत पापा ने नबी योना के उदाहरण पर चिंतन किया। उन्होंने कहा, नीनवे शहर किसी महामारी के चपेट में आ गया था। शायद वह एक नैतिक महामारी थी और उसका विनाश होने वाला था। ईश्वर ने योना को वहाँ प्रार्थना, प्रायश्चित और उपवास का उपदेश देने भेजा। संत पापा ने कहा कि योना शुरू में डर गया था, इसलिए अपने मिशन से भाग गया। ईश्वर ने उससे फिर बुलाया, तब नबी उपदेश देने निनवे गया। संत पापा ने कहा कि सभी धर्मों और परंपरा के लोग महामारी से मुक्ति हेतु प्रार्थना और उपवास करने के लिए बुलाए गए हैं, जैसा कि निनवे के लोगों ने योना का उपदेश सुनकर किया। संत पापा ने कहा, हम में से किसी ने कोरोना वायरस महामारी की उम्मीद नहीं की थी। अब यह हमारे ऊपर है और बहुत सारे लोग मर रहे हैं। कई लोग अकेले ही मौत के शिकार हो रहे हैं। संत पापा ने उन लोगों को चेतावनी दी जो महामारी के प्रभाव से बच गए हैं कि वे इसके लिए खुशी ना मनाएं। अक्सर ऐसा विचार उठता है कि अच्छा हुआ मैं इस महामारी से प्रभावित नहीं हुआ, ईश्वर को धन्यवाद कि मैं सुरक्षित हूँ। किंतु संत पापा ने कहा कि हम दूसरों के बारे सोचें, त्रासदी और अर्थव्यवस्था एवं शिक्षा पर इसके प्रभाव की कल्पना करें, इसके बाद क्या होगा उसके बारे सोचें। उन्होंने कहा कि आज हम प्रार्थना में एकजुट हों ताकि इस स्वार्थी मनोभाव से ऊपर उठ सकें। संत पापा ने स्पष्ट किया कि एक साथ प्रार्थना करना किसी भी तरह से धार्मिक सापेक्षवाद नहीं है। हम पिता से कैसे प्रार्थना नहीं कर सकते। हर कोई अपने अनुसार प्रार्थना करे जैसा वह कर सकता है और जैसे उसने अपनी संस्कृति से सीखा है। हम एक दूसरे के विरुद्ध प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मानवता में भाई और बहन की तरह एकजुट हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि हम अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें ताकि ईश्वर इस महामारी का अंत कर दे। संत पापा ने कई महामारियों की याद की जो मानवता को प्रभावित करते हैं। आधिकारिक आंकड़े का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, साल के पहले चार महीनों में भूख से करीब 3.7 मिलियन लोग मर चुके हैं। महामारी के खिलाफ आज की प्रार्थना हमें अन्य महामारियों के बारे सोचने के लिए प्रेरित करे। नबी योना के ग्रंथ पर पुनः लौटते हुए संत पापा ने कहा कि निनवे के लोगों ने नबी का उपदेश सुना और अपने बुरे रास्ते से वापस लौटे। ईश्वर ने उनके मन परिवर्तन को देखा और महामारी को रोक दिया। संत पापा ने प्रार्थना की कि प्रभु इस महामारी का अंत कर दे और हम पर दया करे। वे भूखमरी, युद्ध और बच्चों की अशिक्षा जैसी अन्य भयंकर महामारियों को भी समाप्त कर दें। इसकी याचना हम भाई बहनों के रूप में एक साथ करते हैं। ईश्वर हम सभी को आशीष दे और हम पर करुणा करे। वैटिकन के तत्वाधान में लौदातो सी सप्ताह का पहल जारी किया गया है, जिसके तहत 16 मई से 24 मई को विश्व प्रार्थना दिवस घोषित किया गया है। लौदातो सी सप्ताह आम घर की देखभाल पर प्रकाशित पैरितिक विश्व पत्र की 5वीं वर्षगांठ पर एक वैश्विक आंदोलन है। प्रार्थना सप्ताह की विषय वस्तु है सब कुछ जुड़ा हुआ है। 16 मई से 24 मई तक कैथोलिकों को निमंत्रण दिया जाता है कि वे ऑनलाइन हस्तक्षेप एवं सहयोग प्रशिक्षण सेमिनार में भाग लें। एक वीडियो संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों को प्रोत्साहन दिया है कि वे इसमें भाग लें और हमारे आम घर के भविष्य पर चिंतन करें। संत पापा फ्रांसिस इन महीनों में पितृतुल्य स्नेह के साथ प्यारे देश लेबनान की स्थिति पर गौर कर रहे हैं और विद्यार्थियों के लिए सहायता राशि प्रदान की है। देवदार का देश लेबनान अपने इस शताब्दी वर्ष में एक गंभीर संकट में है, जिससे दुख, गरीबी और जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं और लोगों में उम्मीदें घट रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी में जो अपने वर्तमान को थका हुआ और भविष्य को अनिश्चित पाते हैं। अपने ठोस सामीप्य के रूप में संत पापा फ्रांसिस ने वैटिकन राज्य सचिवालय एवं पूर्वी कलीसियाओं के लिए गठित धर्म संघ के माध्यम से $2,00,000 400 विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए भेजने की घोषणा की है। अंतर धार्मिक वार्ता हेतु गठित परम धम पीठ समिति के अध्यक्ष कार्डिनल मिक्वेल एंजल आयोसो गिक्सोत ने यूएन द्वारा कोविड-19 महामारी पर आयोजित एक वीडियो सम्मेलन में भाग लिया। मंगलवार को आयोजित सम्मेलन की विषय वस्तु थी कोविड-19 की अनेक चुनौतियों का सामना करने में धार्मिक नेताओं की भूमिका। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें इस चुनौतीपूर्ण समय में एकता और एकात्मकता को बढ़ावा देने हेतु धार्मिक नेताओं की भूमिका पर जोर दिया गया। अपने वक्तव्य में कार्डिनल मिक्वेल ने 27 मार्च को खाली संत पेतुस प्रांगण की याद की, जहां संत पापा फ्रांसिस ने बारिश के बीच कोविड-19 महामारी के अंत के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने संत पापा के शब्दों का हवाला देते हुए कहा, हमने महसूस किया कि हम सभी एक ही नाव पर सवार हैं, सभी कमजोर और दिशाहीन हैं, किंतु साथ ही यह महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि हम सभी एक पंक्ति में होने के लिए बुलाए गए हैं। हम सभी को एक दूसरे को सांत्वना देने की जरूरत है। कार्डिनल ने 3 बिंदुओं पर प्रकाश डाला, एकात्मकता, एकता और बंधुत्व। एकता के बारे बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे सहयोग और बातचीत का आधार हमारी मानवता की आम जड़ है। हम सभी हमारे मानव परिवार के हिस्से हैं। उधर फिलीपींस में आम्बो तूफान 14 मई को स्थानीय समय अनुसार 12:15 बजे पूर्वी समर से सन पोलिकार्पो पहुंचा, जिसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।